देखते हैं तफसीर।
वकाल अल्लाह, और अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तत्तखिजू इलाहैन इस्नैन, ना तुम बनाओ दो इलाह, तुम दो इलाह ना बनाओ। अब देखें ये ईसाइयों में दो इलाहों का कॉन्सेप्ट, या और दो इलाह बनाते हैं, अल्लाह ताला की जात को और किसी और को भी सात इलाह बना लिया। इन्नमा हुआ इलाहुम वाहिद, वो एक ही इलाह है। और इनको देख लें जो बुत परस्त हैं, इन्होंने तो पता नहीं कितने ही इलाह बना लिए, इन्होंने तो बहुत ही सारे बना लिए, इनकी तो कोई तो हद ही नहीं है। लेकिन बाज मुशरिकीन ऐसे थे जिन्होंने दो इलाह इस तरह बनाए हुए थे कि एक खैर का इलाह है और एक शर का। वो कहते थे खैर का इलाह तो अल्लाह है और शर का खुदा जो है वो शैतान है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो अब उसको भी इलाह ही बना लिया, खुदा ही बना लिया, जब उससे भी डरने लगे फिर कि ये हमें कोई शर ना पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इलाह तो एक ही है, फइया या फरहबून, बस सिर्फ मुझी से डरो, सिर्फ मुझसे डरो। याद रखें कि इसका मतलब जब इंसान अल्लाह ताला को इलाह मानता है तो सिर्फ उसी से डरना भी चाहिए, क्योंकि जब आपने सारी पावर एक के हाथ में समझ ली ना, तो याद रखिए जिसके हाथ में इंसान पावर समझता है उसी से उसको डर लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है। आज अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं तो ये ना हो कि ये मुझे कोई सजा दे, मुझसे नाराज ना हो जाए, इसके हाथ में तो सारी पावर है, मेरा रिस्क, मेरी रोटी, मेरे घर वाले, मेरी जिंदगी, मेरा वक्त, मेरा माल, मेरी सांस, मेरी हर चीज, मेरी सेहत, मेरी एवरीथिंग इसके हाथ में है, तो क्या फिर डर नहीं लगेगा? खुद सोचे ना, जब आपने किसी को इतनी बड़ा पावर समझ लिया कि वो इतनी बड़ी पावर अकेले उसके हाथ में है, तो क्या अफोर्ड कर सकेंगे उसको नाराज करना? क्या ये डर नहीं लगता रहेगा, हाय कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, खुद बताइए। लेकिन प्रॉब्लम ही यहां पे ना, इंफॉर्मेशन है, ये इल्म नहीं है, ये यकीन की हद तक नहीं हमारे अंदर उतरा, इसकी डेप्थ नहीं है हमारे अंदर कि हम वाकई ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला इला है, उसके हाथ में सब पावर है, मेरा जीना मरना उसके हाथ में है, मेरे बच्चे उसके हाथ में है, मेरे मेरे प्यारे जितने भी हैं वो उसके हाथ में है, मेरा अमन, चैन, सुकून, खुशियां सब उसके हाथ में है। जब इंसान ये सोचता है वो तो झुक ही जाता है। हम तो इतने से बॉस के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, हम तो एक पुलिस वाला आता है तो उसके सामने थर थर कांपने लगते हैं, हम तो इमिग्रेशन वाला हमसे दो सवाल कर ले तो हम उसके सामने हाथ बांध के सर झुका के खड़े होते हैं। ये तो हालांकि हमारे जैसे इंसान है और हमें पता है कि ये भी एक इंसान ही है, उसकी भी अभी जान निकल जाए कुछ भी नहीं है, क्या है चीज, वो हमारे जैसा है, हमारी तरह सांस लेता है, उसकी भी हमारे तरह के मसले हैं। तो तब भी हमारा ये हाल होता है कि हम उसके आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, और वो खुदा जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, जिससे बड़ा दर्जा किसी का है ही नहीं, जिससे ज्यादा ताकतवर कोई और है ही नहीं, जिसके टॉप पे कोई नहीं, इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। जब ये यकीन आए तो कैसे हो सकता है कि हम ना झुके? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है कि हम ना अपनी बंदगी का इजहार करें? कैसे हो सकता है कि हम ना सजदे करें? कैसे हो सकता है कि हम उसकी फरमाबरदारी ना करें? तो ये इसलिए नहीं होती कि हमने नहीं पहचाना उसको, कदरुल्लाह का कदर ही, हमने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी जैसे कदर होनी चाहिए थी। आपने जाना ही नहीं ना, पता ही नहीं है, तो पता कौन करेगा फिर? पता करने का हमारे पास टाइम ही नहीं। ये ना हो कि ऐसे ही जिंदगी गुजार के कब्र में चले जाए और पता ही ना हो किस खुदा को पूजते रहे, अल्लाह ना करे। तो फइया या फरहबून, बस सिर्फ मुझी से डरो। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंसान को जिसका डर होना चाहिए वो अल्लाह ताला को होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, तख्शौना हो, क्या तुम उनसे डरते हो? फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ इन कुंतुम मुमिनीन, तो अल्लाह ताला ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो ना, अगर तुम्हारा ईमान है कि वो एक खुदा है, उसके ऊपर तुम्हारा ईमान है, तुम कहते तो हो मैं ईमान वाला हूं, लेकिन अगर वाकई ईमान है तो सिर्फ उससे डरो। और हमारे डर कितने होते हैं, किस किस से हम डरते हैं, कभी बरादरी से डरते हैं, कभी बच्चों से अपने डरते हैं, कभी हस्बैंड से डरते हैं, कभी लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं। हर तरह के डर तो हमारे अंदर है, एक नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते, ऐसा ही है ना। किस दिन हम इनसे बेखौफ होके सिर्फ एक अल्लाह से खौफ रखेंगे, किस दिन? इवन पुलिस वाले से भी डर जाते हैं लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं। अलहुमा फिस्समावाति वल अर्दि वलहु वलहुद्दीन वासिबा, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में। अब कोई रह गई चीज, इससे एक्सक्लूडिंग कोई और चीज है कि हम कहें कि अच्छा वो चीज है वो अल्लाह की मिल्कियत नहीं है? पता है इसके अंदर तो सब कुछ आ गया ना, जो आसमानों में, आसमानों मींस ये नहीं है जो हम ऊपर देख रहे हैं हम कोई सितारे। अब इतने हम इस दौर के अंदर आ गए हैं, इतने हमारी जो साइंस ने इतनी तरक्की की कि यहां तक पता चल गया कि कितनी और गैलेक्सीज हैं, कितने और सितारे हैं, सैयारे हैं, कितनी और जो कहकशाएं हैं, ये सब चीज इंसान को पता चल गई। तो अब आप ये नहीं कहेंगे आसमान सिर्फ ये है, अब आप उसकी डेप्थ को समझें और सोचें कि क्या कुछ है आसमान में, और वो सारा किसका है? अल्लाह का। ऐसे नहीं बोलना जैसे कि एक बच्चा बोलता है ये सब कुछ अल्लाह का है, उसको भी पूछ लें, और वो ऐसे ही मैं भी बोलूं, मुझे समझ होनी चाहिए मैं क्या कह रही हूं। सब कुछ अल्लाह ताला की मिल्कियत है, उसने पैदा किया है, उसका हुक्म चलता है सब के ऊपर। कितनी बड़ी बात है ना, जो कुछ जमीन में है, जमीन में क्या क्या है, हर चीज देखें बाहर, कई चीजें हमें नजर आ रही हैं, कई नहीं नजर आ रही, कई चीजें जमीन के नीचे हैं, कई फिजाओं में है, कई छुपी हुई है, कई इतनी छोटी है नजर नहीं आती, कई इतनी बड़ी है समंदरों के अंदर वो नहीं नजर आ रही, कई जमीन के नीचे दबी हुई है रींग रही है वो नहीं पता। हमें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं, कई चीजों को वो अब दिखाते हैं ना कि ये हमने डिस्कवर कर लिया, ये डिस्कवर कर, डिस्कवर मींस ये नहीं कि वो चीज आज पैदा हुई हमें आज पता चली है, पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं सुभान अल्लाह, जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है, अच्छा ये भी कोई मखलूक है, ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऐसे ऐसे कीड़े हैं, ऐसे ऐसे परिंदे हैं, कभी देखें आप डिस्कवरी चैनल के ऊपर कितनी चीजें दिखाते हैं। तो हर चीज उसकी मिल्कियत है, हर चीज उसके अंडर है, हर चीज पे उसका हुक्म है, कितनी बड़ी बात है ये। हम छोटी सी अपने घर को ही लेके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज बन गए, कोई एक टाउन का गवर्नर बन जाता है वो सोचता है मैं क्या चीज हूं, कोई वजीर मुशीर बन जाता है तो वो उसकी अकड़ कितनी होती है, और वो रब हर चीज का ही मालिक, हुक्मरान। वलहुद्दीन वासिबा, और उसी के लिए इतात है दाइमी, दीन उसके लिए ही है, दीन से मुराद क्या है, इतात, इतात उसी के लिए कब की, वासिबा दाइमी हमेशगी की। ऐसे नहीं है मस्जिद में जाएं तो अल्लाह की इतात और मस्जिद से बाहर आए तो कोई पता ही नहीं, ये कौन सी इतात होती है? और फिर कारोबार पे बैठे तो पता ही नहीं कि अल्लाह ताला की बात भी सुनी थी या कुछ बात हमें पता भी है, जिस वक्त हमारी शादियां हो तो फिर तो इतात बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं, इतात भी कोई चीज है, दीन भी कोई चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया अफा गैरा दीन इल्लाह यबगून, अल्लाह के अलावा कोई दीन तुम्हें पसंद है वो तुम तलाश करते हो, जबकि आसमान और जमीन तो सारे अल्लाह के फरमाबरदार है, तुम अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल चाहते हो। हमेशगी के लिए इताअत अल्लाह ही के लिए है, तो इसका वासिब का देखें सूरह साफात में आते हैं ना, वलहुम अदाब वासिब, उनके लिए हमेशगी का अजाब है, तो इसका मतलब होता है हमेशगी, हमेशा उसी की इताअत करनी है। तो खालिक की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं करनी, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही हो तो आपने इस और किसी और का आपने हुक्म मानना है
तो ये नहीं करना। जहां देखना है अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, वहां पे किसी ने भी हुक्म दिया, चाहे वो वालदैन हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बच्चे हैं आपके, चाहे वो कोई भी है, उनकी बात नहीं माननी। जहां टकरा रही है ना बातें, वहां नहीं माननी, चाहे माँ बाप ही क्यों ना। बहुत सी औरतें कहती हमारे हस्बैंड को ये नहीं पसंद, तो हस्बैंड को छोड़े, हस्बैंड आपका मालिक है क्या? उसने आपको पैदा किया क्या? वो आपका राजिक है क्या? हाँ, उसकी इताअत करने का जो हुक्म है या उसकी खुशनुदी देखने का जो हुक्म है, वो ये नहीं है कि अल्लाह की खुशनुदी एक तरफ पड़ी हो, खामिंद की बस खुशनुदी देखो। ये खामिंद भी तो अल्लाह ने ही दिया, और वो भी अल्लाह ही का बंदा है। मालिक तो आपका अल्लाह ही है, वो आपका मालिक थोड़ा ही है। लेकिन जहां पे हमने अपनी मर्जी करनी है, वहां पे कहना कि वो हस्बैंड नहीं मानते। तो आपको कभी ये भी परवाह हुई है कि अल्लाह ताला मानता है कि नहीं इस बात को? अगर अल्लाह नहीं मानता इस बात को, तो हमें ज्यादा फिक्र इस चीज की होनी चाहिए कि मेरा मालिक नहीं मानता, या ये होनी चाहिए कि शौहर नहीं मानता। वो मालिक है, मालिक, मैं उसकी गुलाम हूं। फिर उसके बाद उसको कंपैरिजन करना किसी इंसान के साथ, बच्चे नहीं मानते क्या करें? तो बच्चे नहीं मानते ना माने, बच्चों का हुक्म तो मेरी जिंदगी पे नहीं चलना चाहिए, मेरे मालिक का चलना चाहिए ना। मालिक समझाओ कभी तो फिर, है ना। अगर मालिक ही नहीं उसको समझते, तो फिर जो मर्जी करे, फिर हर एक आपका मालिक बन बैठेगा। फिर लोग भी मालिक हैं, बच्चे भी मालिक बन जाएंगे, वो भी सर पे सवार होके नाचेंगे। फिर शौहर भी कहेगा कि तो मेरी माने। तो याद रखिए, मालिक जो है उसकी इताअत लाजिम है हमेशा, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे गैर शादीशुदा हैं, चाहे आपकी खुशी का टाइम है, चाहे गम का टाइम है, चाहे कोई इसकी इस बात की मुखालफत करता है या इसके हामी है, ये आपको लिए मैटर नहीं करना चाहिए। उनकी इताअत तब करेंगे जब वो उसके मुताबिक हुक्म देंगे, जैसे मालिक ने हुक्म दिए। जब वो मालिक के हुक्म के खिलाफ हुक्म देते हैं, तो मालिक की बात मान लेंगे, उनकी छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कब्र में नहीं जाना, वो हशर में हमारा जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए इस बात को हमेशा के लिए पल्ले बांध लें, आप सुखी रहेंगे। ये वलाहुद्दीन वासिबा, अल्लाह ताला की इताअत दाइमी है। जब आसमान जमीन उसकी इताअत कर रहे हैं, हर चीज उसकी इताअत कर रही है, मैं क्यों ना करूं? हर चीज इताअत का दर्स देती है। अफ़ग़ैर अल्लाह ही तत्तकून, फिर अल्लाह के सिवा किसी और से तुम डरते हो? अल्लाह ताला के सिवा किसी और का तकवा रखते हो? तकवा क्या था, मैंने बताया था आपको, ये तकवा ही तो है कि जो है इंसान ये सोचे कि अल्लाह ताला को कोई ऐसा काम मेरा से गुनाह का ना हो जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो, और कोई ऐसा काम नेकी का रह ना जाए जिससे उसको राजी करना था, उसके जिसमें रजा है वो नेकी का काम मेरे से रह ना जाए। ये तकवा है, बच बच के चलना तकवा है, डर तकवा है, इसलिए उसको डर कहते हैं कि आपको डर है उसकी नाराजगी का। इसी तरह अलाउद्दीन वासिबा का मतलब ये भी है, फाबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत करो खालिस करके दीन को, उसके लिए खालिस करते हैं, खालिस बंदगी उसको चाहिए, सिर्फ उसकी बंदगी। ये नहीं है कि अल्लाह ताला को भी मान रहे हैं और साथ साथ औरों की भी मान रहे हैं, औरों की भी बंदगी शुरू की हुई, अल्लाह की इबादत भी कर ली, उस किसी और की इबादत भी कर ली, ये नहीं होगा खालिस। जैसे मैंने कहा कि इसमें ये नहीं है कि हर एक से डरते रहे, एक अल्लाह से डरे बस। अब देखें जो किसी और को पूजते हैं, कोई आग को पूज रहा है, कोई सांपों को पूज रहा है, कोई किसी और चीज को पूज रहा है, वो असल में उनके भी खौफ होते हैं इन चीजों से कि ये चीजें हमें नुकसान देंगी, इसलिए उनसे डरते हैं। वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, और तुम्हें क्यों नहीं डरना चाहिए अल्लाह से, और क्यों नहीं तुम्हें उसकी सिर्फ इताअत करनी चाहिए? तुम तो ऊपर से सर से पैर तक तुम्हारे पास जो कोई भी नेमत है, फमिन अल्लाह, तो अल्लाह ही की तरफ से तो है, अल्लाह ने ही तो दी हुई है, सर से पैर तक। एक रुआ रुआ भी हमारा जो है ना, ये रुआ जो होता है ना, ये अल्लाह ताला के एहसानात तले दबा हुआ है, उसके इतने एहसान है हमारे ऊपर, गिन नहीं सकते आप। इन तउद्दू नियमत अल्लाही ला तुहसुहा।
तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो ना, गिन नहीं सकते। जो भी कुछ तुम्हें मिला हुआ है, माँ भी को, जो भी तुम्हारे पास है, कोई भी नेमत, किसी किस्म की भी नेमत, चाहे वो मादी नेमत है जैसे जो फिजिकल होती है, या मानवी नेमत है जैसे ईमान है या इस्लाम है या आपके अंदर कोई इताअत फरमाबरदारी का जज्बा है या नेकी का कुछ जज्बा है, ये सारी नेमतें हैं ना, सब अल्लाह की तरफ से। कोई नेकी की तौफीक है, ये भी नेमत है जो किसी को मिल जाए। कोई खौफ खुदा, ये भी नेमत है, फमिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। फिर किस तरह आप बन बैठे कि हम ऐसे, मैं ऐसी, मैं ये, मैं वो, सब कुछ तो अल्लाह का ही है। इंसान को अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिखा दिया कि वो खाली हाथ है, फकीर है, फकीर ही है ना। और चल, एक फकीर जो होता है वो हमारे दरवाजे पे आता है, कम से कम उसके कपड़े तो अपने होते हैं, उसकी आंखें अपनी होती हैं, उसके हाथ पैर अपने होते हैं। वो तो नहीं ना हमारे, तो वो है फकीर, वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कितना कुछ उसका अपना होता है। यहाँ पे तो हर चीज में कह दिया कि चाहे वो कुछ भी है, तेरी सांस भी जो है वो भी मीन अल्लाह है। तुम्हारी नजर, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे आजाद जितने भी तुम्हारी बॉडी में काम कर रहे हैं, तुम्हारी एक एक चीज नेमत इनमें है ना, ये नकेरा है। नकेरा के अंदर क्या होता है कि वुसत होती है, इसके माने में कि कोई भी किसी किस्म की भी नेमत, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है हमारे, सब मीन अल्लाह है। अब इसके ऊपर इसे एक इस सारी आयत को भी छोड़ के सिर्फ इतने से टुकड़े को पकड़ लें आप, और पकड़ के बैठ जाएं, आपके दिन गुजर जाएंगे इसके ऊपर गौर फिक्र करने में, तदब्बर करने में, सोचने में, हाय अल्लाह तूने मुझे कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, जो कुछ मेरे पास है तेरी तरफ से। इसके बाद आप बताएं, एंड ऑफ द डे जब तक आप इसके ऊपर गौर फिक्र करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि आपके अंदर झुकाव आएगा अल्लाह ताला के आगे, आपके अंदर फरमा बरदारी का जज्बा आएगा, आपके अंदर शुक्र गुजारी आएगी, आपके दिल में मोहब्बत आएगी, आपके दिल में ये डर आएगा कि मेरा वो रब नाराज ना हो जाए जिसके हाथ में सब कुछ ही है, मेरा सारी कुछ उसने, देखें जो देने वाला है, वो अगर ले ले वापस कोई चीज, आप कह सकते हैं कि आप नहीं ले सकते, ये क्यों इसने मुझसे ले ली? नहीं कह सकते ना, उसकी थी, मीन अल्लाह का मतलब है उसकी थी, उसने कभी भी वापस ले ले, औलाद में से कोई वापस ले ले, शोहर को वापस ले ले, वालदैन में से किसी को उठा ले, या हमारे आजा में से कोई ले ले, क्या कह सकते हैं कुछ? इसका मतलब सब कुछ मांगे तांगे का तुम यूज कर रहे हो, कुछ तुम्हारा नहीं है। जो ऐसा फकीर हो जिसका अपना वजूद भी उसका ना हो, क्या तस्वीर बनती है आपके जहन में उसकी? मोहताज, बिल्कुल मोहताज। जो मोहताज है वो क्या अपनी कभी भी अपनी नजर उठा सकता है उसके आगे? जो मुनाइम है, जो नेमत देने वाला है, जो उसको सब अता करने वाला है, क्या उसके आगे कुछ बोल सकता है? क्या वो उसको कोई बात सुना सकता है शिकायत की, या क्या वो उससे गिले कर सकता है, ऐसे तूने क्यों किया, वैसे तूने, क्या वो उसकी जुबान में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ये बोले? जिसको ये पता हो, वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, अब आप बताएं उसके बाद हमारा क्या रह जाता है, मेरे हाथ में क्या है? खाली, बिल्कुल। इंसान को तो लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती क्या है? एक फकीर भी रिच है, रिच है वो, यकीन करें वो रिच है, उसके पास कुछ ना कुछ है। मैं उसको फकीर कहती हूं ना, और मैं खुद कितनी बड़ी फकीर हूं अल्लाह की, कितनी बड़ी फकीर हूं। मुझे वो फकीर लगता है जिसके पास कुछ नहीं, कि वो सिर्फ उसके पास पैसे नहीं है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हर चीज में फकीर। क्यों नहीं ये एहसास हमारे अंदर, क्यों नहीं ये बात हमारे अंदर? और वैसे हमें पूछने तो हम कहेंगे हाँ, सब कुछ अल्लाह ही का ही, हाजा मिन फदली रब्बी, लेकिन ये यकीन नहीं है, बिलीव में ये यकीन नहीं है। यकीन डालने की जरूरत है, ये यकीन सीखने की जरूरत है, इसको दोहराने की जरूरत है, इसके ऊपर बहुत गौर की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है। एक एक चीज पकड़ के देखे, अपनी उंगली को पकड़े, अपने नाखून को पकड़े, अपने एक एक बाल को पकड़े, एक एक बाल मीन अल्लाह है, अल्लाह तूने दिया हुआ, मैं तो किसी चीज की भी मालिक नहीं। और है अल्लाह, अगर मैं बोल सकती हूँ तो ये बोल भी तेरे दिए, मैं सोच सकती हूँ तो ये सोच भी तूने दिए, ए अल्लाह अगर मैं ये पढ़ भी रही हूं ना और तूने मुझे यहां तक भी सिखा दिया तो ये भी तेरी तरफ से। I have nothing, nothing, nothing. अल्लाह अकबर, आई एम जस्ट स्पीचलेस, इसके बाद मैं क्या पढ़ा सकती हूँ। फमिन अल्लाह वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, हाईलाइट कर लें इसको, हाईलाइट कर लें इसको, अफा गैर अल्लाह ही तत्तकून, पूछा करें अपने आप से, जब कोई आपको कहे ये मानो मेरी बात, या कोई कहता भी नहीं है, हम तो वैसे ही झुके रहते हैं हर वक्त ही, हाँ, क्योंकि हमें डर होता है ना कि ये नाराज ना हो जाए कहीं, हमसे मुंह ना फेर ले, तो उस वक्त अपने आप को सुनाए अफा गैर अल्लाह ही तत्तकून, जब अल्लाह ताला के लिए कोई एतराज आए तो कहें वमा बिकुम मिन नियमते फमिन अल्लाह, इंसान शर्म कर, शर्म। एक नौकर भी कहता है कि जी इनके घर का पानी हमने पिया, इस घर का नमक मैंने खाया, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक आपके घर से तनख्वाह लेता है तो कहता है मैंने नमक हरामी नहीं करनी, और इंसान तू अपने मालिक की कितनी नमक हरामी करता है कि सब कुछ लेके भी तो उसके आगे नहीं झुकता, तो उसके ऊपर बातें बनाता है, तो कहता है मैं उसको मानता ही नहीं, तुझे बहुत अपनी अकल समझ के ऊपर नाज होता है कि तुझे लगता है कि जो उसके हुक्म है वो तो मेरे लिए काबिले अमल ही नहीं, तुझे ये लगता है कि उसको तो नहीं पता था, मुझे ही सारा पता है, इस जमाने में क्या होना था, मैं ज्यादा अकलमंद हूं, मुझे ज्यादा समझ है कि कैसे चलना है जमाने में, नाउज़ु बिल्लाह, कि उसको नहीं पता था। एक फकीर तो बोल ही कैसे सकता है, उसकी तो जो अपनी औकात समझ ले ना, उसकी तो बोलती बंद हो गई, फिर औकात नहीं समझी हमने अपनी, ये आयत हमें हमारी औकात से दिखा रही है और कायनात दिखा रही है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप ना इन आयत में खो जाएं, इमेजिन कि खल्क सारी की सारी उस अल्लाह के आगे झुकी भी है, उनके वो उनके साए उसको सजदे कर रहे हैं, और एक ये इंसान ना शुक्रे ना कदरे, तुझे अल्लाह की कदर ही ना आई, तुझसे तो अच्छे वो पत्थर है, ये वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कंकर भी अल्लाह की तस्बीह करते, खाने की तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाई, खाना भी तस्बीह करता है, उससे अच्छे तो वो पत्थर हजर है, शजर है, जिन जो अल्लाह के आगे झुकने वाले तो है, ए नादान इंसान तुझे ये भी ना आया, तुझे ये सबक भी नहीं समझ आया कि तेरा तो कुछ भी नहीं है, तू तो सारा का सारा मांगे तांगे का, फिर तू जुबान खोलता, तुझे शर्म नहीं आती। सुम्मा इज़ा मस्सकुम तुर्रु, फिर जब पहुंचती है तुमको तकलीफ, सही नहीं तजारून, फिर हाल ये है, इतनी सी औकात है इस इंसान की कि इसका हाल ये है कि बस कुछ जरा तकलीफ अगर पहुंचती है तो फिर चीखे मारने लगता है, फिर गिड़गिड़ाने लगता है, फिर फरियादें करने लगता है, हाय बड़ी मुसीबत आ गई, हाय ये हो गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, मेरा तो खाना खराब हो गया, ये हो गया, फिर टकरे मारता फिरता है, इतनी सी औकात है, फिर वो कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता, तो जब उसके ऊपर तकलीफ आती तब वो भी कहता है ओ माई गॉड, वो गॉड कहां से आ गया, तुम तो कहते को खुदा ही नहीं, फिर तो उसको भी खुदा याद आ जाता है। और तजारून है ना, जब वैशी जानवर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो जो चीखे मारते हैं ना उसको जुहार कहते हैं, नहीं मेरे इंसान इस तरह बिलबलाता है, इस तरह चीखता है, जब पहले नहीं उसको खुदा याद आता है, पहले भूला होता है, लेकिन देखो तुम तो तुम्हारा तो हाल ये है, जस्ट अपने आप को इन मतलब ये सारी आयतें ना मेरे को बताने की नहीं है, जस्ट आप इनके अंदर अपने आप को महसूस करें, एक आईना है, इसके अंदर देखें, इसके अंदर डूब जाए कि सब कुछ उसका दिया हुआ है, फिर एक इंसान बड़ी बड़के मारता पीता है, जरा सी उसको बीमारी ही आ जाती ना, और डॉक्टर ने कह दी जी कैंसर हो गया इसको, ओ फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद हमारी हालत क्या हो जाती, किसी ने बॉस ने कह दिया तेरी जॉब खत्म हो गई, बच्चे को कुछ हो गया, किसी और तरफ से परेशानी आ गई, फिर देखो फिर क्या इंसान करता है, फिर वो कैसे कराहता है, फिर कैसे पुकारता है अल्लाह को, फिर उसको झुकना आ जाता है, बस तुम इतनी सी चीज की मारते, अब तुम्हें झुकना आ गया ना, पहले क्यों नहीं झुकते, सुम्मा इज़ा कशफ़ दुर्रा, फिर इतना ना शुक्र है कि फिर जब वो हटा देता है तकलीफ को अनकुम तुमसे, फिर क्या करते हो, किजा फरीक मिनकुम बि रब्बी हम युशरिकून, एक फरीक उसी वक्त एक ग्रोह तुम में से अपने रब के साथ शिर्क करने लगता है, फिर उसको और कोई याद आ जाते हैं, जी हमारे फलाने हैं वो, बस जी जो उनकी करामते हैं, बस जी उनकी देन है, जी हमें तो ये मिल रहा है उन्हीं की वजह से मिल रहा है, नहीं जी ये है, उसके ऊपर चादर चढ़ाओ, उधर जाके देख दो, उन्होंने से काम हुआ है हमारा, वहीं से बना है हमारा काम, पहले तो तुम अल्लाह से फरियादे कर रहे थे, अब तुम्हें सारे याद आ गए, कैसी बात है कि लेते अल्लाह का दिया हुआ, खाते उसका दिया हुआ, शुक्र किसी और का करते हो, यकीन करें हमें, हम आगे ये बात आएगी भी, हम किसी के साथ अच्छा करें ना, किसी के ऊपर एहसान करें, वो जाके हमारे किसी और को, हमारे किसी नौकर को सोच ले, अब इतनी मिसाल ऐसे दी नहीं जा सकती ना, क्योंकि अल्लाह ताला और बंदे का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो अब समझ ले हमारे नौकर को जाके इतना शुक्रिया करता है, इसके आगे बिच बिच आते तो क्या हमें महसूस नहीं होगा कि मैं इसके लिए इतनी वो करी, और ये मेरे नौकरों को जाके शुक्रिया कर रहा है, उनके आगे झुक रहा है, उनको तोहफे दे रहा है, और उनका एहसानमंद हो रहा है, ये पागल है, मैंने इसके साथ भलाई की और ये उनको जाके कह रहा है, सारी मखलूक अल्लाह की नौकर है, गुलाम है, उसकी मखलूक है, वो खालिक है, वो एहसान करता है, और इंसान जाके दूसरों के दरों पे जाके उनके सजदे करने लगता है, उनको खुदाई का दर्जा दे देता है, लियकफुरु बिमा अतैनाहुम, ताकि वो ना शुक्री करें इसकी जो हमने उनको अता किया, इसलिए जाके शिर्क करते हैं ताकि वो ना शुक्री करें अल्लाह की, फता मत आओ तो छोड़ दो इनको, जो फायदे उठा रहे हैं करने दो इनको, फसा हुआ तालमून, इनको जल्दी पता चल जाए, देखिए ये पता चलने में ना ज्यादा देर नहीं लगनी, इसलिए कि इधर आंख बंद होनी है ना, उधर सारा कुछ पता चल रहा है, ये जो आज नहीं समझ आता ना, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता, और जो आज यकीन नहीं आता ना, वो यकीन भी आ जाना, समझ भी आ जानी, बड़ी ठीक ठाक समझ आएगी, इतनी सी देर है बस, आंख बंद क्या होनी, जो फरिश्ते ही नजर आ जाने समझे, बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ये भी समझ आ जाएगा कि जिंदगी में किस चीज को प्रायोरिटी देनी थी, ये भी समझ आ जाएगा कि देने वाला कौन है, ये भी समझ आ जाएगा कि अल्लाह की फरमाबरदारी कितनी करनी थी, ये भी समझ आ जाएगा कि नेकियां कितनी करनी थी, गुनाहों से कितना बचना था, ये भी समझ आ जाएगा कि कोई भी नहीं है जो कि कुछ कर सकता है मेरा नफा और नुकसान, जैसे आपसे सलम ने फरमाया था ना हजरत इब्ने अब्बास वाली हदीस में, कि अगर सब भी इकट्ठे हो जाएं और तेरा कुछ तुझे कुछ नफा पहुंचाना चाहे, तुझे नफा नहीं पहुंचा सकते मगर वो जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया, और सब पकड़ के सब कोशिश करें नुकसान करने की, तेरा नुकसान नहीं कोई कर सकते मगर जो अल्लाह ताला ने चाहे, अल्लाहुम्मा ला माने अलीमा आताई तो ला मुआती अलीमा मनात, अल्लाह ताला जिसको अता करना चाहे कोई रोक नहीं सकता, जिसको देना चाहे कोई मना नहीं कर सकता, सब समझ आ जाएगा, आज सिर्फ बोलते हैं ना ये समझ तब सारा आ जाएगा, कुछ कुछ किस्मत होते हैं उनको इस दुनिया में समझ आ जाती है, जालूना माला या आलमूना नसीब अम्मे मारा जकना हम, ये सब चीजें करते थे ना, तो उनके शिर्क को भी, उनके जो जो वो गलत काम करते थे, शिर्क के काम करते थे, उसको भी हाईलाइट करके यहाँ पे बताया गया और उसके जवाब दिए गए, ठीक है इनको छोड़ दो, ये फायदे उठाते हैं इस दुनिया में, फायदे उठाते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए आप सोचते हैं ना, अगर ये इतने गलत काम कर रहे होते, ये मुशरिक जो है बुतों को पूजते हैं, और ये जो ईसाई ईसाइयत में अल्लाह ताला के साथ इतना शिर्क कर रहे हैं, अगर ये इतना ही गलत कर रहे थे फिर इतनी इतनी तरक्कियां कैसे कर ले, फिर तो मुसलमानों को तरक्कियां करनी चाहिए थी, इसलिए कि अल्लाह ताला के लिए दुनिया जो है मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, अगर सूरह ज़ुख़रुफ़ में आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला तो चाहता तो अगर ये मुसलमानों का ईमान वालों का खतरा ना होता कि यही किसी डाउट में पड़ जाएंगे, तो अल्लाह ताला इनको
इनके छते सोने चांदी की बना देता, इनको इतनी दुनिया में, इतनी दुनिया इनको देता, क्योंकि उसको परवाह नहीं। अब जैसे गार्बेज है, अब गार्बेज को आप कहें कि ओ गार्बेज ना कोई ले जाए, कभी कहेंगे आप गार्बेज की परवाह भी नहीं करते, कोई भी लेके चला जाए। अल्लाह ताला की ये नजदीक है दुनिया, ये मच्छर के भी पर के भी बराबर नहीं है, इस गार्बेज कुछ भी नहीं है ये अल्लाह ताला के सामने। ये गार्बेज की आपको मिसाल दे के मैंने बताया है कि यानी जो चीज हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, बहुत घटिया छोटी हकीर चीज है, तो वो हम गार्बेज को समझते हैं, तो सुई की भी वैल्यू उससे ज्यादा होगी। तो अल्लाह ताला के मच्छर का पर क्या होता है, तो वो अल्लाह ताला के साथ ये वह जानवर वो बना लेते उसके लिए। ला यालमूना नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम, जो नहीं वो जानते एक हिस्सा उसमें से जो रिस्क दिया हमने उनको, यानी अपने बुतों का भी एक हिस्सा मुकर्रर कर देते, अपने शरीकों का भी। आज तक भी मुझे याद है वहां पे वो कहा करते, एक दिन उर्स होता था हमारे शहर में किसी बुजुर्ग का, तो वो उस दिन आपको दूध नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि वो सारे जो दूध वाले थे ना वो वहां जाके देते थे, कहते कि अगर हम यहाँ पे नहीं दूध देंगे तो हमारी तो भैंसे दूध देना बंद कर देंगी, दूध खुश्क हो जाएगा, तो हमें वो उस दरबार पे जाके, उस मिजार पे जाके हमें दूध देना है, क्योंकि ये फिर खुश होंगे, इनसे ही तो हमें मिलता है, जो भी उनका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहती, जो भी वो बुजुर्ग थे, ये इनके तुफैल ही तो हमें मिलता है, तो हमारी तो दूध खुश्क हो जाएंगे जानवरों के अगर हमने ना यहाँ पे दिए। तो वो भी कहते थे कि इन बुतों के नाम पे तो हमने देना है, ला इल्मी में उनको पता ही नहीं है। बात सारी वही आ गई ना इल्म की, आज की सारी गुफ्तगू जो है वो ये इल्म कितना जरूरी है कि इंसान को पता हो, और वो इल्म वाला नहीं जो इंफॉर्मेशन है, वो इल्म जो दिल में रास है वो, ये नहीं थे। हालांकि वो अल्लाह को मानते थे, ऐसे नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला का भी हिस्सा निकालते थे, हम सूरह अनाम में पढ़ रहे हैं, अल्लाह का भी हिस्सा निकालते थे, साथ बुतों का भी निकाल देते थे अपने रिस्क से, और अगर कोई कमी हो रही थी तो अल्लाह के हिस्से में कमी कर लेते थे, बुतों वाला हिस्सा कम ना हो, इन्हीं से तो मिलता है हमें। आज भी मुसलमान कहते हैं इन्हीं से तो मिलता है, इसी के इन्हीं के नाम का तो मिलता है, इन्हीं के नाम का तो खाते हैं हम, वो जो के ला यालमून का मतलब ये भी है कि उन बुतों को खबर भी नहीं है जिनके नाम का हिस्सा निकाल रहे हैं, ला यालमून नसीबन, पर ये भी कि ये नहीं जानते, ये भी एक है। अल्लाह इला तो सलून अम्मा कुन तुम तफ्तारून, अल्लाह की कसम अलबत्ता तुम जरूर पूछे जाओगे उस बारे में जो तुम घड़ते थे, जो खुद ही घड़ा हुआ है, खुद ही सारी बातें बनाई हुई है, इनसे पूछा जाएगा, इनसे के जिनकी तुम इबादत करते थे उनके बारे में पूछा जाएगा, तुमने खुद ही झूठ घड़ लिया था कि ये तुम्हें देते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे, ये हमारे सिफारशी हैं, ये हमारे बिगड़ी बनाएंगे, ये सारे झूठ है। वह ये जालूना लिल्लाहिल बनात, और वो अल्लाह के लिए बनाते हैं बेटियां, सुबहाना वो तो पाक है इस सब चीजों से, औलाद से, वलहुम्मा यश्ताहून, और लिए उनके है जो वो ख्वाहिश रखते हैं, यानी उनके लिए अपने लिए वो है जो वो ख्वाहिश रखते हैं, अपने लिए क्या है बेटे, और अल्लाह के लिए क्या बता दिया कि उसकी बेटियां, कौन है बेटियां, फरिश्ते उसकी बेटियां, नऊजु बिल्ला, अल्लाह ताला तो इससे पाक है, खुद अपने लिए उसको नहीं पसंद करते, अपने लिए तो नहीं कहते हमारे लिए बेटियां, अपने लिए तो कहते हैं बेटे हो, हमेशा ख्वाहिश बेटों की होती, चाहे चार बेटे 10 बेटे भी हो जाए, और अल्लाह ताला को वो दे दिया, ये नहीं मतलब है कि अल्लाह के लिए बेटियां क्योंकि बेटे कर देंगे तो ठीक है, ये नहीं है, मगर इससे ये पता चलता है कि इनके लिए, इनके जहन में अल्लाह ताला की क्या कदर है, क्या वैल्यू देते हैं, क्या इन्होंने अंदाजा लगाया अल्लाह ताला का, यानी जो खुद चीज पसंद नहीं वो अल्लाह के नाम लगा दे, इससे उनकी जहनीयत पता चलती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह ताला को बेटियां नहीं पसंद, उसको बेटे पसंद है, अगर उसको बेटे अल्लाह नाउज बिल्ला फिर बेटा होता तो फिर ईसाइयों को क्यों रद्द किया जाता, तो ना उसको बेटा चाहिए ना बेटी, लेकिन सिर्फ इतनी इनकी बात बताई जा रही है कि देखो खुद अपने लिए जिस चीज को नहीं पसंद करते वो भी लेके तो अल्लाह के नाम लगा दे, उसकी बेटियां तो खुद अपने लिए क्या करते हैं,